समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Cabinet approves development of Greenfield Airport at Kota Bundi in Rajasthan. Also approves construction of 6-lane access control capital region ring road in Odisha.
इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल होल्ड्स टॉक्स ऑन बाउंड्री इश्यूज विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी इन न्यू दिल्ली टुडे। Chinese Foreign Minister states setbacks between the two countries were not in the interest of both sides.
मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश के कारण रेल सेवाएं बाधित। मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।
And two-time Olympian medalist Manu Bhakar bags 10-meter air pistol bronze at 16 Asian Shooting Championships in Kazakhstan. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the Khelo India policy.
Khelo India, duniya ko jeeto, apne hunar ko aaj dikhla bhi do, dil se khelo. सभी साथ है दिखला भी दो खुद पे कर लो यकीन क्या तैयार हो सभी
Yes, and listeners, when you think of sports, what comes to mind? Football, cricket, basketball, sure. But sports are more than just running on a field or scoring goals. They teach us discipline, teamwork, leadership and resilience. And sports are not just about winning medals. They are about building character.
बिल्कुल अभिषेक, जब युवा खेलों में शामिल होते हैं तो वे तनाव को बेहतर ढंग से संभालना सीखते हैं। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं। और वहीं हम खेल के मूल्यों की बात करें तो खेल के माध्यम से हम दूसरों का सम्मान, निष्पक्षता और कभी हार न मानना सीखते हैं। खेल रक्त संचार में सुधार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।
Yes, absolutely. And the importance of sports and fitness in one's life is invaluable. Playing sports inculcates team spirit, develops strategic and analytical thinking, leadership skills, goal setting and risk taking. A fit and healthy individual leads to an equally healthy society and strong nation. And sports is an extremely important component for the overall development of a nation.
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। इस अपार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करें। हमें खेलों में भागीदारी के एक प्रबल भावना का विकास करना होगा, जिससे खिलाड़ी अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन कर सके। तभी भारत एक खेल महाशक्ति बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है।
Yes, absolutely, and addressing the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi emphasized on the importance of sports. Prime Minister Modi, in his Independence Day address, reaffirmed the government's commitment to nurturing a dynamic and inclusive sporting culture in the country. And PM highlighted the Khelo Bharat Niti, a comprehensive framework aimed at strengthening the sports ecosystem at every level, from grassroots participation in schools and colleges to advanced athlete development.
कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो. स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो, यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं.
खेलो इंडिया नीति का उद्देश्य भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है. यह युवा प्रतिभाओं की पहचान करती है, उन्हें तराशने, प्रशिक्षण लेने और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करती है. खेलो इंडिया नीति को भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है.
The Prime Minister emphasized that the objective is to establish a robust support system encompassing sports infrastructure, access to coaching, training facilities and other essential resources to promote excellence in sports. The Khelo Bharat Niti 2025 marks a significant turning point in India's sporting journey, reinforcing the government's vision to transform the nation into a global sporting powerhouse while ensuring that every young Indian has the opportunity to pursue and excel in sports.
सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया नीति 2025 की शुरुआत की है. हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि यह पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य भारत के खेल परिदृश्य को बेहतर बनाना है. यह बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, प्रतिभाओं की पहचान करके और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर वैश्विक मंच पर देश की उत्कृष्टता प्राप्त करने पर केंद्रित है.
एंड स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस leveraging sports to boost industries such as tourism, manufacturing and sports technology.
वहीं सामाजिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है.
Sports or people's movement seeks to engage communities in physical activities, making sports a cultural cornerstone.
खेलो इंडिया नीति 2025 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो छात्रों, युवाओं में समग्र विकास और जीवन कौशल को पोषित करने के लिए शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करती है तथा शैक्षणिक और एथलेटिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है.
Yes, and apart from this, नीति focuses on several key objectives, which are establish comprehensive sports programs for all participation groups from grassroots to elite levels, organize sports competitions and leagues at various levels, creating a robust competitive structure.
खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक साक्षरता पहलों को लागू करना, भावी चैंपियनों को तैयार करने के लिए एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना,
ensure equitable access to sports infrastructure across the country,
खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट केंद्रित सहायता प्रणालियां प्रदान करना, प्रदर्शन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना,
strengthen governance and institutional frameworks in the sports sector. And listeners, Khelo India state centers of excellence are sports facilities across India, built upon existing facilities, aiming to provide basic facilities for sportspersons with potential. Each center will cater to three sporting disciplines.
देश भर में खेल अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया नीति 2025 आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक असमानताओं के बावजूद ब्लॉक से राज्य तक अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेल सुविधाओं तक समान पहुंच पर जोर देती है. इसका उद्देश्य 2036 ओलंपिक में उत्कृष्टता को लक्षित करने और संभवतः उनकी मेजबानी के लिए रणनीतिक योजना के साथ भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है. यह विभिन्न खेलों के माध्यम से प्रारंभिक प्रतिभा की पहचान को बढ़ावा देता है.
Yes, and the NITI also has provisions to organize regular sporting leagues designed specifically for these groups to enhance engagement and provide sustained opportunities for involvement.
खेलो इंडिया यूथ गेम्स और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस योजना ने युवा एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए हैं। यह न केवल एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है बल्कि भविष्य के चैंपियनों के विकास में भी योगदान देता है।
Yes, so to conclude our discussion on Khelo India is a significant step towards building a healthier, stronger and more sports-oriented nation, empowering youth and placing India firmly on the global sports map. Continued investment and participation in such initiatives are essential for sustaining this positive momentum. Let's contribute towards building a fitter and stronger nation.
रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
Yes, and now we move on to a second topic in a Dateline section, that is the World Photography Day. And Neha, like they say, a picture is worth a thousand words.
जी, लेंस के जरिए हम दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को दुनिया भर में फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और प्रभाव का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह विशेष अवसर सभी उम्र के लोगों को छवियों की शक्ति का अन्वेषण करने, सार्थक क्षणों को कैद करने और लेंस के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
Yes, and it highlights photography's role in preserving culture, documenting history and connecting people globally. The origins of the World Photography Day trace back to 1839 when the French Academy of Sciences introduced this process, and this early method of capturing images marked a huge leap for science and art.
जी, समय के साथ फोटोग्राफी सभी के लिए सुलभ हो गई और इसने कहानियों, घटनाओं और स्मृतियों को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे तरीके को बदल दिया है।
And the influence of a single image often transcends language and time, shaping perceptions and emotions worldwide. Photography plays a crucial role in shaping perspectives, raising awareness and preserving memories for future generations. From historic events to personal milestones, photographs serve as a visual storytellers that connect people across time and space. And so to conclude our discussion, every photograph is a pause button on life. And in conclusion, World Photography Day reminds us that a single photograph can speak louder than words, bridging cultures, emotions, and generations. It encourages creativity, reflection, and appreciation for the beauty and truth captured through a lens.
जी, विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ कैमरों और रचनात्मकता का ही उत्सव नहीं है बल्कि हर तस्वीर के पीछे छिपी कहानियों, भावनाओं और संदेशों का भी उत्सव है। यह हमें दुनिया को और करीब से देखने, उसकी विविधता की सराहना करने और लेंस को अभिव्यक्ति, दस्तावेजीकरण और बदलाव के एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया गया है। अब श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्लास्टिक की टोकरी, लोटा या दूसरी प्लास्टिक सामग्री के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
काशी विश्वनाथ धाम में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए मंदिर न्यास ने परिसर को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में अब श्रद्धालु प्लास्टिक की किसी भी वस्तु के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नए नियमों के तहत मंदिर परिसर में प्लास्टिक की डलियों में फूलमाला, प्लास्टिक के लोटे में जल या दूध और प्रसाद के प्लास्टिक डिब्बों को ले जाना पूरी तरह वर्जित होगा। इनकी जगह अब बांस की टोकरी, स्टील के लोटे और कागज या दफ्ती के डिब्बों का इस्तेमाल श्रद्धालु कर पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि दिसंबर 2024 में श्री काशी विश्वनाथ धाम बोर्ड ने मंदिर में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। चरणबद्ध तरीके से पहले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर पूरे सावन महीने में जागरूकता अभियान चलाए गए। विक्रेताओं को भी समय दिया गया और बोतलों और कटोरों जैसी प्लास्टिक की वस्तुओं के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री मुफ्त में वितरित की गई और लोगों को इस पहल के लिए प्रोत्साहित किया गया।
जो सिंगल यूज प्लास्टिक था पहले से बैन किया गया, फिर तो जो प्लास्टिक का लोटा ढोआ टोकरी लेकर आते हैं उसके लिए भी जागरूकता अभियान पूरे श्रावण मास चलाया गया था। श्रावण मास के अगले दिन एक दिन का और लोगों को जो समय होता है वो दिया गया। इसके बीच में विक्रेताओं के बीच जाकर जो वैकल्पिक सामग्री हो सकती है प्लास्टिक को प्रतिबंध करने पर जिसका प्रयोग श्रद्धालुओं को करने लिए कहा जाए उसका वितरण निःशुल्क किया गया।
अभियान के तहत मंदिर परिसर के मुख्य चौराहों, गोदौलिया और मैदागिन पर डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी गई। अयोध्या से यहां दर्शन करने आए श्रद्धालु दिनेश ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और स्वच्छता के लिहाज से ये बहुत अच्छी पहल है।
मंदिर प्रशासन द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल है। प्लास्टिक बैन होना भी चाहिए, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही चल रहा था, काशी में भी चल रहा था, आज अब ये मंदिर तक आ गया जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी दुकानदार भाई अपने जो हैं प्लास्टिक की चीजों को इन्वाइट करके आप कागज के वस्तुओं का इस्तेमाल करें।
द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दुनिया भर के सनातन धर्म से जुड़े लोग अपार आस्था लेकर पहुंचते हैं। मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने से न केवल पर्यावरण संरक्षण की सोच मजबूत होगी बल्कि स्वच्छ भारत मिशन को भी बल मिलेगा, जिसमें दुकानदारों श्रद्धालुओं से भी सहयोग की अपील की गई है। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
द मेघालय गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक टैक्सीज इन शिलोंग एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू प्रमोट इको फ्रेंडली एंड नॉन मोटराइज्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
Chief Minister Conrad K. Sangma informed that the government is working on a scheme to facilitate the adoption of electric taxis in the state. He said that initiatives are being taken to encourage the use of electric vehicles and other non-motorized transport system in Shillong. As part of this move, the state is set to receive the first batch of 50 electric buses. The Chief Minister also mentioned that STEM buses, which had earlier been deployed in schools, will gradually be replaced with electric vehicles. Sangma emphasized the need to make the public in Shillong more accustomed to a bus-based transport system. He added that the government is also focusing on improving pedestrian infrastructure. The state further plans to expand its electric vehicles initiative to other towns and cities including Juwai, Tura and Nongstein. To address traffic congestion in Shillong, the government has planned to introduce 100 electric buses. Additionally, 13 crore has been sanctioned for the construction of an e-bus depot at Mao Diang Diang in the new Shillong township. Paritosh Dikshit, Akashwani, Shillong.
आदिवासी समाज के बच्चों के लिए आज शिक्षा के नए द्वार खुल रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का परिणाम है कि अब आदिवासी बच्चे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दे रहे हैं। गुजरात के आदिजाति तापी जिले में शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तापी के तारे परियोजना जैसी अनोखी पहल की है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
तापी के तारे परियोजना के तहत तापी जिले के 15 सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा से चुने गए 28 आदिवासी छात्रों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का शैक्षणिक दौरा किया। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान आदिजाति जिले के अंतरियाल गाँव में रहने वाले इन बच्चों को रॉकेट प्रक्षेपण की प्रक्रिया समझने, वैज्ञानिकों से मिलने और अंतरिक्ष मिशनों को करीब से जानने का अवसर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के निदेशक जयंत सिंह राठौर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के भीतर जिज्ञासा और आत्मविश्वास जगाना है।
इस टीम के अंदर कुल 28 आदिजाति विद्यार्थी हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि जितने भी हमारे जिले के आदिजाति विस्तार के लोग हैं उनको विज्ञान के प्रति एक विशिष्ट जागरूकता मिले, साथ ही साथ ये एक्सपोजर विजिट उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देगा और विज्ञान के प्रति एक मोटिवेशन भी प्रदान करेगा।
इस प्रोजेक्ट के तहत इन विद्यार्थियों ने पहली बार हवाई सफर का भी अनुभव किया। इस अवसर के लिए आदिजाति विद्यार्थी स्वित कोटवाड़िया ने स्कूल एवं प्रशासन को धन्यवाद दिया।
मेरा नाम है कोटवाड़ी स्वित दिलीप भाई, मैं कक्षा 11 साइंस का छात्र हूं। मैं उच्छल तालुका के भीतबुद्रा गांव का रहवासी हूं। मैं अपनी स्कूल एमआरएस इंदु के सभी अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया जिससे मैं इतने आगे बढ़ पाया हूं। मैं गुजरात सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इसरो में जाने की अपॉर्चुनिटी दी है।
सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर आदिवासी छात्र भी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में चमक सकते हैं। तापी के तारे योजना यह पहल आने वाली पीढ़ी को विज्ञान का सपना दिखा रही है और उन्हें कल के वैज्ञानिक बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर ने 219.7 अंक हासिल किए। चीन के खिलाड़ी पहले और कोरिया के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर वर्ग में 164 निशानेबाजों का सबसे बड़ा दल भेजा है। इस प्रतियोगिता में 28 देशों के 734 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं।
And the Indian Test captain Shubman Gill has made his return to the T20 international format and has been appointed vice captain for the upcoming Asia Cup in the UAE. Surya Kumar Yadav will continue to lead the Indian T20 team. The other notable inclusions in the squad were spearhead Jasprit Bumrah and spinner Kuldeep Yadav, who both returned to the T20 side after last year's T20 World Cup title in Barbados. Announcing it in a press conference, BCCI chief selector Ajit Agarkar said, Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal are the standbys for India's Asia Cup squad. Abhishek Sharma, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Aksar Patel, Jitesh Sharma, Arshdeep Singh, Varun Chakravarti, Sanju Samson, Harshit Rana and Rinku Singh have retained their place in the squad that featured in the 5-match T20 series against England earlier this year. The 8-team Asia Cup T20 tournament will be played in Abu Dhabi and Dubai from September 9th. To 28. So that was a quick look at some sports news. And now moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices increased today, ending with gains of over 0.40%. Sensex rose 370 points to close at 81,644, while Nifty gained 103 points to settle at 24,980. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also move upward. Both the mid-cap index and the small-cap index gained 0.95%.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we will briefly explore the lives of two great Indians from the southern part of our country, Dhirar Satyamurthy and P. Krishna Pillai.
Today is the birth anniversary of the brave heart Sundara Shastri Satyamurthy, an orator par excellence. S. Satyamurthy hailed from Tirumayam in the princely state of Pudukottai of the present-day Tamil Nadu. Born on 19th of August 1887, he had a traditional upbringing. After completing education from Madras, he practiced as a lawyer for a brief period. But the quest for freedom made him become a rebel with a cause.
He actively took part in the protests against the colonial rulers, be it partition of Bengal, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre or Simon Commission. Satyamurthy was at the forefront.
When Satyamurthy became the mayor of Madras in 1939, the city was facing acute water scarcity. A visionary politician, Satyamurthy pressed upon the need for building a reservoir in Pundi, about 50 kilometers west of the city, to augment the water supply. Today also, it remains the only reservoir of water for Chennai. Satyamurthy was also a champion of fine arts, especially Carnatic music. He was instrumental in setting up the Music Academy of Madras.
He actively participated in the Swadeshi movement and the Quit India movement and was arrested by the British in 1942. Satyamurthy was put on trial and was sentenced to rigorous imprisonment in Amravati jail. During the journey, he hurt his spinal cord and eventually succumbed to injuries on 28 March 1943 at General Hospital, Madras. Sundara Shastri Satyamurthy was also the political mentor of senior Congress politician K. Kamaraj.
आज उत्पल दत्त की पुण्यतिथि है। भारतीय रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में अगर किसी ने हास्य और गंभीरता दोनों को समान निपुणता से निभाया तो वो थे उत्पल दत्त। उनके काम को देखते हुए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल
है। Yes, that was a song from Hrishikesh Mukherjee's breezy Hindi comedy Golmaal. And Utpal Dutt was the actor, director and writer, playwright. He was primarily an actor in Bengali theatre, where he became a pioneering figure in modern Indian theatre when he founded the Little Theatre Group in 1949. And this group enacted many English Shakespearean and Brett's plays in a period now known as the Epic Theatre period. And he has also acted in over 100 Bengali and Hindi films. He received the National Film Award for Best Actor in 1970 and three Filmfare Best Comedian Awards. In 1990, the Sangeet Natak Academy, India's National Academy of Music, Dance and Theatre, awarded him his highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship, for lifetime contribution to theatre. Let's listen to one of his dialogues.
आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है?
नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है, मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ।
अरे रे 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 रे, अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्या?
यू नो, मैंने आपको बुड्ढा कह दिया।
क्या हुआ?
बुड्ढा तो मैं हूँ ही। हाँ, बुड्ढे तो आप हैं ही, लेकिन यू नो, जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहना चाहिए, इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right? Sit down. Thank you.
थैंक यू सर। नाम क्या है आपका?
लखी, लखी शर्मा।
लखी?
वैसे नाम है लक्ष्मण प्रसाद, लेकिन यार दोस्त मुझे लखी कहते हैं, आप भी वही कहिए।
नहीं, मैं लक्ष्मण प्रसाद ही कहूंगा।
एज यू प्लीज सर, आपकी मर्जी। वैसे चाहे तो आप मुझे लक्ष्मण प्रसाद, दशरथ प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं।
आज पुण्यतिथि है जान निसार अख्तर की। उर्दू शायरी की दुनिया में अगर जज्बात की गहराई को महसूस करना हो तो जान निसार अख्तर का नाम जरूर लिया जाता है। 1914 में ग्वालियर में जन्मे जान निसार अख्तर प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे।
Yes, and John Richard Dickens was born on this day in 1951. He's an English retired musician who was the bass guitarist for the rock band Queen. Let's listen in to the band's hit track, One Vision.
आज जन्मदिन है अब्दुल राशिद खान की। अब्दुल राशिद खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। वे ग्वालियर घराने से थे। उन्हें वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
Yes, and Peter Edward Ginger Baker was born on this day in 1939. He was an English drummer. His work in the 1960s and 70s earned him the reputation of rock's first superstar drummer. Let's listen in to his hit track, Sunshine of Your Love. Yes, and Satya Narayan Nadella was born on this day in 1967. He's an Indian-born American business executive who is the chairman and chief executive officer of Microsoft, succeeding Steve Ballmer in 2014 as the CEO and John W. Thompson in 2021 as chairman. Before becoming CEO, he was the executive vice president of Microsoft's Cloud and Enterprise Group, responsible for building and running the company's computing platforms.
जीतता वह है जिसमें शौर्य, धर्म, साहस, सत्व और धर्म होता है, ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी का आज जन्मदिन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक, आलोचक और उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनकी लेखनी में इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं की गहरी झलक मिलती है।
And he was also awarded the Padma Bhushan in 1957 for his contribution to Hindi literature and the 1973 Sahitya Academy Award for his collection of essays, Alok Parva. And also moving on, Neha?
Mohammad Zahoor Khayyam Hashmi. Ab hum yaad karenge Hindi film jagat ke us mahaan sangeetkar ko jinki dhunon ne sangeet premiyon ke dilon mein amar sthan bana liya. जी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, जिन्हें हम सब खयाम नाम से जानते हैं। संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण शामिल है। खयाम जी की धुनों में गहराई, नफासत और आत्मा की मिठास झलकती थी। उमराव जान, कभी कभी, त्रिशूल, आखिरी खत और फिर सुबह होगी जैसी फिल्मों में उनके संगीत ने उन्हें अमर पहचान दिलाई। खयाम जी की बात हो और हम उनके गाने न सुने, ऐसा नहीं हो सकता।
बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए।
So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. So from Neha Goswami and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
Namaskar.